तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध के चौथे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। नरति क्वचिद् उत्कंठ जोर से पुकारता है, हे कृष्ण कहकर। क्वचित कभी उत्कंठा उत्सुक होकर, विलज्जा लज्जा रहित, नृत्यति नाचता है, क्वचित कभी तत्भावना कृष्ण के भावों से युक्ता लीन होकर, तत्माया ऐसा सोचते हुए कि वह कृष्ण बन गया है, अनुचकार अनुकरण किया और निस्संदेह। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति विधान स्वामी बताए। अनुवाद, कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगती। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। प्रहलाद महाराज कभी यह अनुभव करते थे कि भगवान उनसे दूर चले गए तो वे जोर से उन्हें पुकारते। जब वे देखते कि भगवान उनके समक्ष है तो वे प्रमुदित होते। कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर वे भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते और भगवान से विलग होने पर वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते। भक्त के इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकेंगे। इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर गहराई में प्रवेश करना होता है। प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती है, किंतु परमात्मा तथा अंततः गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति के लिए और आगे जाना होता है। तब भक्त भगवान की शांत आस्य सत्य वात्सल्य या माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रस की थी। जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता कि भगवान दूर है तो वे रोने लगते हैं। पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत करने के लिए भगवान को माता के समान दूर से आते देखते हैं और बालक से यह कहते सुनते हैं मेरे बेटे मत रहो, मैं आ रही हूं। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह न करके यह सोचते हुए नाचने लगता है, ये रहे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्णतः हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है, जिस तरह ग्वाले जंगली जानवरों के आचरण की नकल उतारते हैं। किंतु वह सचमुच भगवान नहीं बनता। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। ओम अज्ञान की निरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोधिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सारुजातं सगणरघुनाथान्वितं कंसधीयं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखायुताश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गुरुं यत्पातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकता व जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में जब भक्त कोई भक्ति करते करते एक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज को प्राप्त किया है, तो ये अनेकों लक्षण उसके शरीर में आते हैं। तो इस श्लोक और इसके तात्पर्य में जो बता रहे हैं, जैसे कि निर्विशेषवादी इस प्रकार के लक्षणों की सराहना नहीं करते, एक तो ये, दूसरा जो भक्त कैसे आगे चल करके भगवान से शांत रस दास साख्य वात्सल्य ये सभी रसों में कृष्ण की सेवा करता है और उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, तो ये दूसरा। तीसरा, जीवात्माओं के लिए क्या साधन है कि उसको वो साध्य प्राप्त हो जाए, हम सभी भक्तों के लिए और बाकी किसी भी जीवात्मा के लिए भी। तो ये सभी हम देखने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उपाख्यान आता है, उसमें कैसे निर्विशेषवादी इस प्रकार के भावों की लक्षणों की सराहना नहीं कर रहे हैं। तो भगवान तो बहुत ही, जैसे कि यहाँ तो प्रहलाद महाराज कभी वे रोते हैं, कभी नाचने लगते हैं और कभी वो उनको जोर से पुकारने लगते हैं। तो भगवान इतने मधुर हैं और जीवात्मा उन्हीं को ढूंढ रहा है। कृष्ण पुस्तक में बताया है कि हर कोई कृष्ण को ही ढूंढ रहा है इस संसार में, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी कृष्ण के विरह में हैं और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है और कोई इसको साक्षात्कार करता है, कोई इसे नहीं कर पाता है। जॉर्ज हैरिसन का है लेखनी, उसने ऐसे करके बताया है। इस संसार में जितने भी रूप लोग ढूंढ रहे हैं वो सभी रूपों में वास्तव में वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे भगवान जब किसी को मिल जाते हैं तो फिर उनसे विरह जब हो जाता है तो फिर क्यों नहीं वो उसके लिए रोए, उनके लिए रोए। भगवान सभी गुणों की खान है, मधुरता से भरे हुए, इसलिए मधुराष्टक में कहा गया है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम यमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिनका आदर जिनका होठ मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, जिनका पूरा शरीर ही मधुर है, हृदयम मधुरम उनका हृदय भी मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनका बोलना मधुर है, वचनम मधुरम वचनम मधुरम सोना मधुर है, सब कुछ मधुर है उनका। तो ऐसे भगवान जब किसी को मिलते हैं तो फिर वो अवश्य इस प्रकार के जो भाव है उसके शरीर में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि भगवान तो कभी भक्त कभी भी भगवान भगवान कभी भक्त कभी भी ऐसा समय नहीं होता है कि भगवान को भूलते नहीं है, हमेशा वो भगवान का स्मरण ही करते हैं। प्रेमान जन छुरी तो भक्ति भी लेते, सदैव भक्त जो है कृष्ण को अपने हृदय में देखता है। तो फिर विरह कैसे हो रहे हैं, भगवान से दूर कैसे हो रहे हैं? तो ऐसी अवस्था में ये दोनों लक्षण होते हैं, एक तो विप्रलंबा की सेवा होती है जब भगवान दूर चले जाते हैं, और उस अवस्था में भक्त अनेकों प्रकार से भगवान का स्मरण करता है, उनकी लीला का स्मरण करता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, और उस वक्त एक प्रकार के लक्षण आते हैं, और जब भगवान से मिलन होता है तो फिर दूसरे प्रकार के लक्षण आते हैं। इसलिए दोनों विरोधाभास के लक्षण जो है, जैसे जैनता भी होती है और गर्व भी होता है, ये सभी लक्षण अलग अलग प्रकार से दोनों प्रकार के भाव में विप्रलंबा और जो भगवान से मिलन होता है उसमें ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में। तो हम ये सभी देखते हैं कैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आया, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं जीवात्माओं को कि क्या साधन अपनाना चाहिए अपने जीवन में, और कैसे निर्विशेष वादी उसका उसके सराहना नहीं करते। तो शंकराचार्य प्रकाशानंद सरस्वती थे, वे महाप्रभु को देखते हैं नाचते हुए गाते हुए और कीर्तन करते हुए अनेकों भक्तों के समूह में, तो ये सभी देख करके महाप्रभु से बोलते हैं कि ये आप क्या करते हो, भावुक हो करके ये अनेक दूसरे भावुकों के बीच में आप ये नाचते हो गाते हो हंसते हो, ये सभी क्या है, आप तो कितने ऊंचे संप्रदाय में यहाँ पे संन्यास आपने लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, आपको नियमों का पालन करना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए, ये सभी सन्यासी का कर्तव्य होता है। ये क्या भावुक की तरह आप कीर्तन करते हो नाचते हो गाते हो, वैसे दिखने में तो तुम साक्षात नारायण लगते हो। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से प्रकाशानंद सरस्वती इस बात को समझ गए। गोपाल जी तात्पर्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात नारायण है, तो ये देख करके वो बोलते हैं कि साक्षात नारायण हो लेकिन ये सभी जो भावुकों की तरह तुम कर रहे हो ये सब तुमको नहीं करना चाहिए, वेद इत्यादि का पठन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के व्यवहार को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, तब फिर महाप्रभु आगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे कैसे प्रकाशानंद सरस्वती जो निर्विशेष वादी थे उन्होंने कैसे सराहना नहीं की इस प्रकार के व्यवहार को, क्योंकि गोपाल जी यहाँ पे तात्पर्य बता रहे। तो महाप्रभु बोलना शुरू करते आगे चलते, प्रभु कहे सुना शिपा हर कर गुरु मोरे मूर्खा देखी कबीला शासन। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सुनिए शिपाद, मैं जो कुछ भी करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ या जो भी रोता हूँ, तो इसका कारण क्या है इसको सुनिए। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, मूर्ख देख करके मेरे ऊपर शासन किया। शासन मतलब उन्होंने बताया क्या तुमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मूर्ख तुम तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। अरे तुम मूर्ख हो, मेरे गुरु मुझे बोलते हैं तुम मूर्ख हो, वेदांत, वेदांत मतलब क्या होता है वेदों का अंत, इसको पढ़ने का तुम्हारा कोई वास्तव में योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं तुम्हारे इसके ऊपर, वेदांत अधिकार। तुम कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण के नाम को लो, कृष्ण मंत्र जपा मंत्र सदा यही मंत्र सार, यही मंत्र जो है सभी वेदों का सार है। तो इसी नाम को, भगवान के नाम को अपने जीवन में आत्मसात करो। तो यहाँ पे तात्पर्य उपाध भी बताते हैं कैसे कोई भी जीवात्मा भी भगवान के नाम को अपने जीवन में लेकर के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया है या चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं तो उसके बाद कहते हैं कि मूर्ख तुम तुम्हारे कृष्ण मंत्र जपा सदा यही मंत्र सार। बोलते आगे चल करके कि कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचना, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है, पूरा संसार नष्ट हो जाता है, और कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाता है। फिर बोलते हैं नाम बिनु काली काले नाही अरे धर्म, सर्व मंत्र सार नाम है शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, यही सभी शास्त्रों का सार है। तो बहुत बार लोग शास्त्रों को पढ़ करके कुछ उसमें से निकाल लेते हैं। शास्त्रों में तो अनेकों प्रकार की बातें दी गई होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अधिकार है, उसके अनुसार शास्त्रों में अनेकों बातें बताई गई। श्रीमद् भागवत में बताया गया एकादश स्कंद में स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा सगुना परिकीर्ति विपर्यस्त दोष सद उभय निश्चय। किसी व्यक्ति का कोई अधिकार है तो उसके अनुसार अगर वो कुछ शास्त्रों से लेता है या उसके गुरु उसके आधार पर ही शास्त्रों से उसको बताते हैं, तब यही वास्तव में सही व्यवहार है, सही योग्यता है उसके लिए। और इसके विपरीत अगर होता है तो फिर वो सही व्यवहार नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शास्त्रों में ये बता रखा है अष्टकालीय लीला, कितने लोग यहाँ पे हैं जो उसके ऊपर ध्यान करते हैं, जिसका अधिकार है वही कर सकता है। और वही शास्त्रों में बता रखा है कहीं पे कि धृति क्षमा दमो स्थेम शौचम इंद्रिय निग्रह, मन को नियंत्रण में करना चाहिए, फिर क्षमा कर देना चाहिए। 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं मनुष्यों को, तो वो मनुष्यों के केवल लक्षण है, वो भक्ति नहीं है इसमें। द्वितीय क्षमा दमो स्त्रेम शौचम इंद्र स्वच्छता रखने चाहिए, इंद्रियों को निग्रह में करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और क्षमा करना चाहिए, इस प्रकार के 10 लक्षण बता रखे। तो ये एक प्रकार के लोगों के लिए, ये सभी के लिए, ये आगे चल करके भी आता है, लेकिन खाली इतना ही करने मात्र से कोई परम धर्म को पालन कर रहा है करता है ऐसा नहीं है। तो इसके संबंध में भक्ति और ठाकुर बताते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार के 10 लक्षण भी हैं, वो अगर कल्पों तक भी इस दुनिया में वास करता है तो फिर उसे दुनिया की किसी भी व्यक्ति को कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा है। ये भी तुम विष्णु भक्त से वरम पंच दिनानी च नतु कल्प से हस्यानी भक्ति ही नश्य पेश है। इस प्रकार के लक्षण किसी के अंदर है भी, वो अगर कल्पों तक भी वास करे तो उसको कुछ भी उससे संसार को लाभ नहीं मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भगवान का भक्त अगर जीवित वरम पंच दिन आने से, अगर केवल 5 दिन रह जाए संसार में, तो उसी से जगत का कल्याण होगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सभी लक्षण है, वो कल्पों तक रहे तो भी उसका उससे संसार में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए शास्त्र में क्या मर्म है, क्या सार है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे महाप्रभु यही बता रहे हैं, गोपाल जी तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं कि कलयुग में बहुत स्ट्रांगली जिस चीज पर रिकमेंड किया गया है, बहुत जोर देकर के बोला गया है, और उसका श्लोक बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो। तो कितनी बार लोग पढ़ते हैं और जिसको जोर देकर के कहा गया उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जिसको जो साइड स्टेटमेंट है उसको पकड़ के चलते रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी कहीं लिख रहे हैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी कहीं आता है तात्पर्य में चैतन्य चैतन्य मिलेगा आपको, जैसे कि एक स्त्री थी, यानी एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो एक जगह प्रभुपाद पढ़ लेते हैं कि जब स्त्रियां संख्या में ज्यादा हो जाए तो कोई भक्त जो है एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, भक्त या लोग लिखते हैं ऐसे, एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। तो वो लेकर के गया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी आपने ऐसा लिखा है तो हम कर सकते हैं ऐसा। और प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, मैंने इतनी सारी चीजें लिखी तुमको केवल वही दिखाई देता है। तो जो उसके मन में अच्छा लगा वो उसने वहां से निकाल दिया। तो हमारे आचार्यों ने क्या बोला है, शास्त्रों ने क्या बताया, जोर दे करके उसके ऊपर बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान देने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड, जोर दे करके इस चीज को कहा गया है। फिर बोलते हैं बोलिए श्लोका सिखाई ना मोरे कंठे करी ये श्लोक करी है विचारे, ये सभी बोल करके मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक सिखाया और बोले कि इस श्लोक को कंठ में रखना और इसके ऊपर तुम विचार करना। वो क्या है बताइए? हरेर्णाम 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 केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम एक ही श्लोक में 3 बार बोल दिया, उसके बाद भी 3 बार नकार दिया किसी और दूसरी चीज को। एवं हरे नाम एवं केवलम, एवं मतलब कि यही है, और केवलम मतलब, एवं मतलब निश्चित ही, और केवल मतलब केवल यही। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इसी प्रकार का श्लोक जैसा कि यहां पे बोल रहे हैं, आगे चल करके फिर से बोलेंगे, ये तो बोलिए एक श्लोक का शिकल मोरे भागवत तेरे सारे ही बोले वारे वारे, आगे चल करके आए गए। उसके आगे बोलते हैं, ये आज्ञा जब मुझे मेरे गुरु से मिला तब मैं गया भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन लेते लेते ये क्या हो रहा है, मेरा मन जो है उत्तेजित होने लगा, कभी मैं हंसने लगा, कभी गाने लगा, कभी रोने लगा, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के लक्षण मेरे शरीर में आने लगा, जैसा कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज के भी शरीर में आ रहे हैं। ये सभी लक्षण मेरे शरीर में आने लगे और मैं फिर इसके ऊपर विचार करने लगा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, नाम लेते लेते मैं पागल कैसे होते जा रहा हूं। तो बोलते हैं धैर्य धर करके मैंने विचार किया और जाकर के मेरे गुरु के पास ये निवेदन किया कि ये नाम लेते लेते हो क्या रहा है, मेरे सारे ज्ञान को ढक रहा है ये। तो भगवान के नाम का ये प्रभाव होता है कि ये सारे ज्ञान को ढक देता है। भगवान के नाम से ज्ञान आता भी है, लेकिन जो अगर तीव्रता से भगवान का नाम लेता है तो उससे ज्ञान ढक भी जाता है। ढकता क्यों है और आता कैसे है? आता है यदि इच्छा से परम ज्ञानम ज्ञानादेत परम पदम तदा धारण राजेंद्र गुरु गोविंद कीर्तनम, ऐसा बताया गया। अगर तुमको परम ज्ञान चाहिए जिससे गोविंद के चरण कमल मिल जाए तो केवल गोविंद के नामों का कीर्तन करो, इससे ज्ञान मिलता है। लेकिन यहां पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरा सारा ज्ञान ढक गया, मैं नाच रहा हूं, और ज्ञान रहेगा बहुत गंभीर रहेगा तो फिर इस प्रकार के लक्षण कैसे आएंगे। लेकिन भगवान के नाम में इतना वो विभोर हो जाते हैं कि ज्ञान पूरा हरिनाम रूप ढक दे। तो फिर ये सभी तो अपने गुरु के समक्ष वो प्रकट करते हैं, मैं नाचता हूँ, हंसता हूँ, गाता हूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे से। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल जपी तीज पीत मंत्र तोरी लागल। हे गुरुदेवी आपने किस प्रकार का मंत्र दिया मुझे, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार, इसकी कितनी शक्ति है, क्या शक्ति है इसमें। किवा तार बोल जपते जपते मेरा मन पागल होते जा रहा है। तो आगे बोलते हैं हंसा है ना चाहे मोरे करा एक सुनी गुरु हंसी बोलीला वचन। वो बोलते हैं ये कभी हंसाता है कभी नचाता है कभी रुलाता है, ये कर क्या रहा है हरिनाम मेरे साथ। और ये सभी सुन करके मेरे गुरु मुझे बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं गुरु, कृष्ण नाम महामंत्र यही तस्वभाव यही जपे तार कृष्ण ऊपर जय भाव। तो भगवान के नाम को जो लेता है उसका यही स्वभाव है, जो इस नाम का जप करता है कीर्तन करता है तो उसके अंदर ये सभी अनेकों प्रकार के लक्षण भाव आने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज के भी शरीर में आ रहे हैं, इसीलिए वो बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं, वो अपने इष्ट देव को बुलाते हैं। पहले ही शुरुआत होता है नदति, जो उसे पुकारता है हे कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जब आते हैं, कोई इस अवस्था में आ जाता है तो इसको भाव की अवस्था कहते हैं। और भाव की अवस्था में गीता का श्लोक चतुश्रुति गीता अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रभुते ते इति मत्वा भजन्ते अहम बुद्धा भाव सुनि। वो कृष्ण को सर्वत्र देखता है और देखता है कि सब कुछ कृष्ण से ही आया हुआ है। और इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भजन निरंतर करते रहता है बुधा भाव सुनो। तो आगे चल करके बोलते हैं कि कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ यार आगे तीर्ण तुले चारी पुरुषार्थ। तो कृष्ण के प्रति ये जो प्रेम है ये सबसे परम पुरुषार्थ है, इसी को पंचम पुरुषार्थ भी कहा जाता है। तो इसके आगे जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है ये सभी कुछ नहीं है। कृष्ण प्रेम जो है अगर एक समुद्र की तरह है तो उसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष एक बिंदु की तरह भी नहीं है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमा नंदा मृत सिंधु मोक्षादि आनंद यार न एक बिंदु, यही चीज होता है। फिर बोलते हैं कृष्ण के नाम का फल क्या होता है, कृष्ण नाम मेरा फल प्रेमा सर्वशास्त्र कह भाग्य से प्रेमा तो मैं करी लय। कृष्ण के नाम का फल है कि कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाए और सौभाग्य से तुम्हारे जीवन में उस प्रकार का प्रेम अब आ गया है कृष्ण के प्रति। प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनुक्षोभ कृष्ण चरण प्राप्त उपजाय लोभ। तो इस प्रेम का स्वभाव होता है कि वो अनेकों प्रकार के लक्षण पैदा करना शुरू कर देता है और व्यक्ति को और ज्यादा उत्तेजित करता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वैसी लालसा बढ़ाने के लिए ये भगवान का नाम और उत्तेजित करता है और उस प्रकार की लालसा बढ़ती है फिर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। फिर बोलते हैं अनेकों प्रकार के ये लक्षण भगवान का नाम लेते लेते शरीर में आते हैं, पसीना आना, शरीर का थर थर कांपना, रोंगटे खड़े होना, आवाज अवरुद्ध हो जाना, दयनीयता नम्रता, ये सभी अनेकों प्रकार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। फिर बोलते भाला है ला पाईना तुम्हें परम अपुषार्थ तो तुम्हारे प्रेम से आमी होगी ना पिता। अब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है तुमको ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो गया है और इस तुमको क्योंकि प्रेम प्राप्त हो गया है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कृतार्थ हो गया तुम्हारे। आगे बोलते नाचे गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। अब जाओ नाचो गाओ भक्तों के साथ संकीर्तन करो, भक्त संगे कर संकीर्तन और कृष्ण नाम का तुम प्रचार करो और सभी जीवात्माओं का इस प्रकार से कल्याण करो। तो सभी जीवात्माओं मतलब हम भी जीवात्माएं उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारे को भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, सब कुछ बता रहा हूं। फिर बोलते आगे चल के, ए तो बोलिए कृष्ण का सिखाई मोरे भागो तेरे सारे ही बोले वारे वारे। तो वेदों का सार क्या है? श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवत का सार क्या है? एतो बोली, बोल रहे मेरे गुरु में, गुरु ने मेरे को क्या बोला? एतो बोली एक श्लोक सिखाई मोरे, ये सब बोल करके मेरे गुरु ने मेरे को एक श्लोक सिखाया। वो श्लोक जो है भागवत तेरे सारे ही भले वारे वारे, ये भागवत का सार है, इसलिए इसको बार बार बोल देता हूं। एक दो बार बोल के नहीं छोड़ देते थे, तो बार बार बोलते थे। ऐसी चैतन्य चैतन्य में अन्य जगह कहा गया, व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलियुग धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद भागवतम में बारंबार इस चीज को व्यक्त किया गया है कि कलयुग का धर्म है भगवान का नाम संकीर्तन, और यही सार है श्रीमद भागवतम का सार, नाम संकीर्तन सार लगाया है। तो बोलते भागवत का कौन सा श्लोक ऐसा वो बार बार बोलते थे जो कि सार है श्रीमद भागवतम का? हे वमृता सुप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग चित्त उच्च तो भगवान का नाम जब किसी को बहुत प्रिय होता है और नाम लेने में वो रुचि रखता है, तो ये नाम क्या करता है? हसत यथो रोदिति रौती गाय, कभी वो हंसाता है, कभी वो हंसता है, कभी रोता है। हसत यथो रोदिति रौती गाय, कभी वो गाता है जोर जोर से, और ऐसा करते हुए वो बाहर के लोगों के दुनिया की परवाह नहीं करता है। दुनिया के लोग क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सबकी परवाह नहीं करता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु जो प्रहलाद महाराज के भी गुरु हैं, सभी के गुरु हैं, सभी गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु और गुरु कहा जाता है भगवान, सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। वो अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं क्या हमको ग्रहण करना है और कैसे किसी भक्त के जीवन में इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पे बताया है अंतिम श्लोक में क्या, कि वो बाहरी लोगों की परवाह नहीं करता। कैसे परवाह नहीं करता? उन्हीं के गुरु बोल रहे हैं। कौन है गुरु? गुरु के गुरु माधवेंद्र गुरु। मंदव बांधव संचया जड़ दिया, शुरुआत कैसे हो रहा याद नहीं। तो वो बोलते हैं कि जो नीतिवान लोग हैं वो मुझे भले ही बोले कि ये जो तुम ये व्यक्ति जो है क्या हो गया है, ये भ्रमित हो गया है, ये मोह में पड़ गया। नीतिवान लोग मुझे ऐसे बोले, मंदव बांधव संचया जड़ ध्यान मुक्ता दराशो दरा, मेरा भाई जो है उसका, मेरा भाई मुझे बोले कि ये मूर्ख हो गया है, और मेरे मित्र और बांधव हैं ये लोग मेरे को बोले कि ये निराश हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। उसके बाद बोलते वेदों में पटु लोग जो है वो बोले मेरे को, बोले ये पथभ्रष्ट हो गया है। उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुरा काम महादाम्बिकम, जो धनी सब है वो मेरी तरफ उंगली दिखा करके बोले कि पागल हो गया ये। उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुरा काम महादाम्बिकम, और जो विद्वान लोग हैं वो बोले कि ये बहुत ही गर्व से भरा हुआ है। फिर भी मोक्तुम न क्षामते मनाग मनो गोविंद पाद स्पृहम, फिर भी मेरा मन कृष्ण की सेवा से थोड़ा भी हिलता नहीं, हालांकि ऐसे थोड़ा भी हटता नहीं है, हालांकि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। तो इस प्रकार से बता रहे कैसे वो पूरी तरह से बाह्य जो पर्यावरण है उससे पूरी तरह से उदासीन हो जाता है और भगवान में पूरी तरह से संलग्न रहता है, तल्लीन रहता है। तो यहां पे हम देखें कैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन से, और यहीं पे इनके जो गुरु हैं नारद मुनि उनके जीवन में भी आता है उपाख्यान। उन्होंने क्या किया और स्वयं प्रहलाद महाराज ने भी क्या किया, प्रहलाद महाराज का जो उपाख्यान चल रहे हैं उन्होंने स्वयं भी क्या किया, प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु से श्रवण किया, श्रवण करके फिर क्या किया उन्होंने, कीर्तन किया, जो सहपाठी सब थे उनके साथ कीर्तन किया, इनके कीर्तन के प्रभाव से उनका भी मन बदल गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति के नवधा भक्ति बताते हैं वो अपने, आप अपने पिताजी को बताते हैं, पिताजी को बताते हैं, किसको बताते हैं, ये बताते हैं खैर, श्रवणम कीर्तनम। और तो फिर ये जो नव भक्ति के अंग है, इसमें भी भक्ति और ठाकुर कहते हैं ऐसा कि श्रवण कीर्तन और स्मरण ये सबसे मुख्य है, और ये भक्ति का जो है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। और इसमें भी अगर देखें तो बताया भजन मध्य सर्वशिष्ठ, तो उसी नाम के ऊपर ला रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आया है, तो उससे इस प्रकार के दिव्य निर्माण के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज की श्री में। तो इनके गुरु जो है वो नारद मुनि, नारद मुनि के भी जीवन में इसी प्रकार की बातें आती है, कैसे वो भगवान को प्राप्त कर लिया और फिर भगवान के लिए क्रंदन करने लगे। प्रहलाद महाराज कभी भगवान को पुकारते हैं, जब वो दूर चले जाते हैं तो आने पर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, जैसे कि कोई माँ देखती है, कोई बच्चा देखता है कि माँ उसकी दूर चली गई है तो रोना शुरू कर देता है, बुलाना शुरू कर देता है, और माँ के नजदीक आने से बच्चा फिर से खुश हो जाता है, हंसना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से इनके गुरु के संबंध में भी आता है, नारद मुनि कैसे एक बार जब उनकी माँ चली गई तो फिर वो वट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे भगवान के रूप का, तो भगवान के रूप का ध्यान करते करते उनका रूप, भगवान का रूप उनके हृदय में आ जाता है, हृदय में आता है, वो भगवान के रूप को देखते हैं, और भगवान का रूप इतना मनमोहक है, इतना मनमोहक है कि वो देखते रहते हैं, और अचानक भगवान अपने रूप को उनके अंदर से क्या करते, तिरोहित कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो जैसे कोई बहुत मूल्यवान वस्तु है वो खो जाए तो कैसे कोई व्यक्ति उसके लिए विवल हो जाता है, कहाँ खो गया ढूंढना शुरू करते जाए दूर, तो ऐसे भगवान के अंदर से खो जाने पर नारद मुनि जो है बहुत ज्यादा, पिछले जन्म में दासी पुत्र जब थे तो बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ, कहाँ गया, वहीं पर बैठ करके फिर से वो ध्यान करना शुरू करते हैं, और उसी प्रयास से फिर से भगवान का रूप सामने आता नहीं, वही प्रयास करते हैं लेकिन फिर दोबारा भगवान का रूप सामने आता नहीं। क्यों नहीं आता है, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा के बिना भगवान का दर्शन करना कोई कर नहीं सकता है। जब किसी को भगवान की अहेतु की कृपा होगी, भले ही पहले वाला ही नियम वो फिर से पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इस बार भगवान उनको दिखाई नहीं दी, तो भगवान जब सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और अहेतु की कृपा करते हैं, सामने में आते हैं, तभी जाकर के कृष्ण का दर्शन होता है, अपने बलबूते पे ये सब नहीं होता है। और कृष्ण के ऊपर इस प्रकार की निर्भरता रखना, श्रद्धा रखना, यही है भक्ति। गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या त्वानन्या शक्या अहम एवं विधोजना ज्ञातुम द्रष्टुम च सत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः, केवल भक्ति से मुझे तुम जान सकते हो, भक्त्या त्वानन्या शक्या अहम एवं विधोजना, तुम मुझे जान सकते हो, देख सकते हो जैसे मैं हूं तुम्हारे सामने, और मेरे समझ, मेरी जो समझ है, गुह्य समझ है, उसमें तुम प्रवेश कर सकते हो। ये सब कैसे होगा, भक्ति से होगा। अगर ज्ञान मिश्र भक्ति है, कर्म मिश्र भक्ति है, या योग मिश्र है, तो ये सब इसे नहीं होने वाला। भक्ति मतलब करना है इसको करने के लिए, नाम लेना है नाम लेने के लिए, भागवत पढ़ना है भागवत पढ़ने के लिए, इसी को भक्ति कहा है। कृपा जी से एक बार पूछा गया, व्हाट यू विल गेट बाय चैंटिंग, आपको ये जपा करके नाम लेकर के मिलेगा क्या, कृपा जी बोलते और नाम लेने के लिए मिलेगा। यही करने के लिए और भी मिलेगा, भगवान के लिए माला बना के क्या मिलेगा, और माला बनाने के लिए मिलेगा, भगवान का श्रृंगार करके क्या मिलेगा, और श्रृंगार करने के लिए मिलेगा, कुकिंग करके क्या मिलेगा, और कुकिंग करने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा फल यही वास्तव में, भगवान का दर्शन करके क्या मिलेगा, और दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि के हृदय से जब भगवान तिरोहित कर लेते हैं तो बहुत प्यास करते हैं, बहुत प्यास करते हैं, लेकिन भगवान फिर से उनके समक्ष आते नहीं है, समक्ष आते नहीं है। और लेकिन जब नारद मुनि इस प्रकार से देख लेते हैं तो उनकी सारी इंद्रियों में प्रकाश आ जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। नहीं तो ऐसे बद्ध जीवात्माओं की इंद्रियां जो है सोई रहती है, उनमें जान नहीं रहती, लेकिन भगवान की कृपा से फिर इंद्रियों में प्रकाश आ जाता है। और फिर प्रभा जी ऐसा बताते हैं कि वो उन प्रकाशित इंद्रियों से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हो गए थे। भगवान ने जब ये सभी देखा तो फिर भगवान ने बोला उनको कि नारद, इस जीवन में मैं तुम्हें तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जो भौतिक कल्मषों जिसके अंदर रहते हैं वो मेरा दर्शन नहीं कर सकते, और मैंने एक बार केवल तुमको मेरा दर्शन दिया है। ये किस लिए दिया है? तुम्हारी लालसा मेरी और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो भगवान का जो दर्शन कर लेता है, भगवान के प्रति उसकी लालसा और भी बढ़ती चली जाती है, कभी घटती नहीं। क्योंकि भगवान का जो दर्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवात्माओं, मतलब कि जो भौतिक शरीर में है उनका जो दर्शन है उस प्रकार से। ये सब दर्शन कोई करेगा कुछ समय के बाद यही चीज फीका लगने लगे। कोई अगर मान लीजिए विश्व सुंदरी से भी विवाह करे कोई कामी पुरुष, और देखते देखते फिर कुछ सालों के बाद फिर उसको देखना नहीं चाहे, और कुछ समय के बाद तो झुरियां ही आने लगेगी, तो कौन देखना चाहेगा इसमें। लेकिन भगवान जो है नित्य नवीन रहते। प्रभात जी लिखते हैं कि कृष्णा हर कुछ जो आध्यात्मिक जगत में हर चीज को डायनामिक रखते हैं, हर चीज एकदम नया नया लगता है वहां पर। तो भगवान बोलते हैं सकृत दर्शितम रूपम, मैंने तुमको सकृत मतलब एक बार मुझे मेरा रूप दिखाया है ताकि तुम्हारी लालसा मेरे प्रति बन जाए और बढ़ती चली जाए। तो मैं अभी विराम देता हूँ, यहाँ पे 9 बजे है, अभी आगे अगर कोई प्रश्न है तो बोलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला प्रपाद की।